मन पे छाप पड़ती है, वो पूरी जिंदगी ही में हमने जो किया उसकी छाप रहती है, और जो आखिरी समय पर छाप रहती है वो भी हमारे भविष्य की जिंदगी पर प्रभाव डालता है। तो हमने कल अलग-अलग पहलू देखे साइंस के, तो हम अभी फिर से एक कोट शेयर कर रहे हैं। ये विक्टर ह्यूगो का कोट है जो कहते हैं कि दुनिया की सभी सेनाओं जो भौतिक दुनिया से हम नहीं समझ सकते हैं, तो ये वो विचार है, ये वो आइडिया है जिसका समय आया है। एक और कोट हम शेयर करना चाहेंगे, ये आइंस्टाइन का कोट है। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास 1 घंटा हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं 55 मिनट उसका कारण समझने में समय बिताऊंगा और 5 मिनट में निवारण करूंगा। तो जब हमें क्लियर डायग्नोसिस यानी कारण का पता चल जाता है, तो निवारण बहुत ही जल्द हो जाता है। तो कारण पता करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप अपने कमेंट्स, क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हैं चैट पर, और ये सेशन आप एंजॉय कीजिए। हम चलते हैं ब्रदर प्रशांत के पास। सभी को हेलो और गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। बहुत ही सुंदर कोटेशन था जो हमें मदद करता है हमारे को ओरिएंट करने में, यानी हमारे विचारों को सही दिशा में लाने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्षणों के अटेंशन के साथ, जो हमने अब तक सुना। कल तक हमने ये समझा कि हमारे पास एक चुनाव है, अपना बेस्ट दृष्टिकोण इस्तेमाल करने का, बेस्ट बुद्धि इस्तेमाल करने का। तो जो इस दृष्टिकोण से दिखता है कि अगर टेबल है तो हमें टेबल दिखाई देता है, जो कहानी में दिखता है वो कहानी में ही दिखता है। तो हम स्पष्टता से देखते हैं। तो अगर हमारी जीवन इस दुनिया से परे की है तो वो परे की है। तो इस एनवायरनमेंट में, इस वातावरण में जो अदृश्य यात्री है, खिलाड़ी है, वो जागृत हो जाता है इस वातावरण में, और वो देख पाता है चीजों को बहुत ही प्राकृतिक तौर पर, नेचुरल तौर पर। उनका उनकी उपस्थिति को महसूस करना ये नॉर्मल है उसके लिए, साधारण बात है, अमरता नॉर्मल बात है। उस घर को बिलोंग करना ये नॉर्मल बात है। तो हम अपने आप को इन अनुभवों को रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं। और इतने बड़े परिवार को बिलोंग करना ये भी नॉर्मल बात है, इतने बड़े आत्माओं के परिवार को बिलोंग करना ये नॉर्मल बात है, स्टोरी भी नॉर्मल है। तो इसीलिए वो कोई भी लगाव नहीं लगाते इस स्टोरी में। बच्चे लोग भी जो है कहानी में बंधन नहीं बनाते हैं। तो कहानी में किसी चीज की शिकायत नहीं, किसी चीज का जुनून नहीं, किसी चीज की। वो अदृश्य प्रेक्षक भी है, ऑब्जर्वर भी है, वो उस कहानी के अंदर एक मेहमान की तरह है। और वो ये महसूस करता है कि बहुत ही लकी है, और शुरुआत की स्थिति ये है कि वो अमर है, इमॉर्टल है, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, पूरी तरह से एब्सोल्यूट वे में, पूरी तरह हर तरह से वो सुरक्षित है। हर क्षण उसके लिए जैसे एक तोहफा है, जैसे हम अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, हम इस जीवन की खूबसूरत सच्चाई को याद रखते हैं, और याद रखते हैं कि हमें हर समय वो श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और इस दुनिया को ऊंची चेतना से देखना है। धन्यवाद। कि ये अलग अलग पहलू हैं, आमतौर पर हम ये चीज नहीं देखते हैं अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। सभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी पत्थर इंस्टीट्यूशंस की तरह, यानी इस दुनिया के अंदर लॉक्ड हैं। जब हम उस पत्थर बुद्धि से हम देखते हैं, तो ये लगाव को प्रोत्साहन देता है। पेचीदा बना देता है चीजों को, क्योंकि असुरक्षा से बना होता है वो। असुरक्षा के कारण इस तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हैं। आज हम एक और पहलू देखेंगे अपनी यात्रा का। उनको अभी व्हाइट बोर्ड के लिए रीस्टार्ट करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। ये अब काम कर रहा है। तो हमने देखा कि अगले पिछले सेशंस में कि हमारे पास हमारी अपनी दुनिया है। ये जो लाल रंग की लाइन देख रहे हैं आप, ये सोल वर्ल्ड है। अगर आप जागृत हैं, तो हम समझ जाएंगे हम कौन हैं, और ये अपनी अद्भुतता देखते हैं, और सच्चे परिवार की अद्भुतता को देखते हैं, और इस दुनिया को अद्भुतता से देखते हैं, वंडर से। और जब ये इच्छाएं और निराशा नहीं होती, तो हमारे पास हर तरफ से सकारात्मकता होती है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है, ये नीले रंग का बॉक्स जो है, जिसको हम दुनिया कहते हैं, और ये यात्री इस दुनिया से पास करते हैं। हम यहाँ पर परमानेंट नहीं हैं, यानी अल्पकाल के लिए हैं। हमने ये भी देखा कि हमने ये डॉटेड लाइन को क्रॉस कर लिया है, जो अदृश्य यात्री हैं वो भ्रम में आ जाते, इग्नोरेंस जिसको कहते हैं, कंफ्यूजन कहते हैं, और फिर कंफ्यूजन में बॉन्डेजेस होती हैं, बंधन होती हैं, फिर हम सफर करते हैं, दुख झेलते हैं, फिर और बंधन आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये नीचे की ओर जाता हुआ सर्पिल है, डाउनवर्ड स्पाइरल, नीचे ही चलते जाते हैं, ये हमारी मन की स्थिति है। हम सुरक्षा की अपेक्षा कर रहे हैं उस दुनिया में जो खुद ही असुरक्षित है, अप्रत्याशित है। तो अगर कोई पूछे कि कैसे पता चले कि कोई पत्थर बुद्धि है, तो वो यही कि इस अप्रत्याशित दुनिया में वो अगर सुरक्षा ढूंढ रहा है, यही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पत्थर बुद्धि का। हम एक और प्रक्रिया देखेंगे, फेनोमेना देखेंगे हमारे यहाँ, यानी मनुष्य आत्माओं में ये फेनोमेना होता है, और वो है ईगो यानी देह अभिमान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है सभी के लिए, क्योंकि तो क्या कोई बताना चाहेगा कि ये सब्जेक्ट, ये विषय क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? कोई चैट पे टाइप कर सकता है। सभी विषय इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पर ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आप टाइप कर सकते हैं। तो जवाब आ रहे हैं, क्योंकि अहंकार यानी देह अभिमान जो है वो भय पर आधारित है, सत्य पर नहीं, और उसने हमें अपने आप को भुला दिया है जो हम हैं। ये जवाब आ रहे हैं। और किसी ने जवाब दिया है कि ईगो जो है वो सोल का ऑपोजिट है, सोल जो है रियल ड्राइवर है। तो सभी जवाबों का अपना महत्व है, पर हम जो एक जवाब देना चाहेंगे वो ये कि देह अभिमान, ईगो जो है रूल करता है हमारे जीवन को, वो रूल करता है यानी राज करता है, वो राजा होता है। तो हम देखते हैं कि ये सब क्या है जो आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं अभी इस वक्त। तो ये इनविजिबल प्लेयर जो है इस दुनिया से गुजर रहा है, और कंफ्यूजन होती है, और वो डाउनवर्ड स्पाइरल में, नीचे की सर्पिल में जाता है, मन की स्थिति नीचे की ओर जाती है, और जो एक चीज जन्म लेती है वो है आई, यानी वो अपने आप को भूल जाता है, और अपने आप अपनी परिभाषा यानी अपनी पहचान जो है वो स्टोरी के आधार पर बनाता है, ड्रामा के आधार पर। ये जो आप देख रहे हैं आई बोर्ड पर ब्लैक कलर का, तो सोशियोलॉजी में जो है, समाज के शास्त्र में ये आई वर्ड आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता है, पहचान के लिए। तो अभी हम समझेंगे कि ये पहचान क्या है, थोड़ा और गहिरता से समझेंगे। हम एक एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे एक फ्रेंड का जो ड्रामा में एक्ट कर रहा था। वो प्रोफेशनल एक्टर था, और वो खुद कहते हैं कि उनका जो रोल था वो उन पर हावी हो गया था, वो कंफ्यूज हो रहे थे, वो है कौन, रोल है या वो खुद है। मार्क चैपमैन जो है जॉन लेनन को बहुत पसंद करते थे, जॉन लेनन जो है म्यूजिशियन है, उन्होंने जॉन लेनन के पोस्टर्स लगाए थे और उन्होंने उनके जैसे हेयर स्टाइल भी किया। और कुछ समय बाद उनको ऐसा लगने लगा कि वो खुद जॉन लेनन है, यानी इतनी जबरदस्त उन्होंने पहचान बना ली, मार्क चैपमन ने पहचान बना ली जॉन लेनन के आधार, किसी और के आधार पर। जहां पर अभी प्रशांत भाई बैठे हैं वहां पर एक पौधा है पास में, वहां पे वो रोज पानी देते हैं उसे, लोगों को वो प्लांट बहुत प्रशंसा करते हैं। अगर आज कोई आता है और कहता है कि वो प्लांट अच्छा नहीं है, पौधा अच्छा नहीं है, तो वो अगर बुरा मान जाते हैं, वो उनको बहुत बुरा लगता है, तो क्यों उन्हें बुरा लगता है? तो उन्होंने उनके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन उस पौधे के बारे में बोला है कि वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सबकॉन्शियसली यानी सचेतन मन में उन्होंने ये सोच लिया है कि वो पौधा उनका भाग है, माफ कीजिएगा, अवचेतन मन में सबकॉन्शियसली उन्होंने इस आई को जन्म दिया, यानी अहंकार देह अभिमान को जन्म दिया है, पौधे के आधार पर अपनी पहचान पौधे के आधार पर बनाई। तो अब क्योंकि ये आई है, तो अब अगर आप उस पौधे के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो उनको पर्सनल लगता है, बुरा लगता है। जब वो आए नहीं थे तब उनको वो पर्सनल नहीं था, यानी जब उन्होंने पहचान नहीं बनाई तो उनको कुछ बुरा नहीं लगता था। तो ये सब कुछ जो है सबकॉन्शियस लेवल पे काम कर रहा है, पर ये है, पर ऐसा व्यतीत होता है, फीलिंग आती है। हम अपने आप को इस दुनिया की चीजों पर आधारित करते हैं और ये आए जन्म लेते जाते हैं बहुत सारे। तो क्या आप लोगों को भी इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन है, आप अपनी पहचान बनाते हैं? तो वो कहते हैं कि जब हम लाइन क्रॉस कर जाते हैं, उस अज्ञानता की लकीर को क्रॉस कर जाते हैं, तब ये आई जन्म लेते हैं। हम अपनी पहचान बनाते हैं किसी और चीज के आधार, ड्रामा के आधार पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं, आप कोई और एग्जाम्पल्स उदाहरण देना चाहें तो चैट पे टाइप कर सकते हैं। तो जवाब आ रहे हैं कोई गाड़ी से, कोई घर से, जॉब से, दूसरे लोगों के आधार पर, पैसे से, बच्चों से। तो लोगों ने टाइप किया है। जहां जहां आपको लगता है आप व्यक्तिगत तौर पर चीजों को ले रहे हैं, चाहे देश के आधार पर, अपने शहर के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, रिलीजन, और कुछ समय बाद ये पहचान बहुत बड़ी बना लेते हैं हम, वो और भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। शुरू शुरू में ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन बाद में ये और बड़ा होता जाता है। आप अपने आप को दूसरों के चीजों पर, यानी कहानी की चीजों पर आधार बना के पहचान बना रहे हैं, ये बहुत ही अटपटी बात है, एब्सर्डिटी कहते हैं इंग्लिश में। आप केवल यहां से गुजर रहे हैं, आप ट्रैवलर हैं और आपका एग्जिट है, निकास है। को कोई गाड़ी के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकता है, कोई दूसरे लोगों के आधार पर, कोई पॉप स्टार या फिर किसी सेलिब्रिटी के आधार पर अपनी पहचान बना सकता है। और फिर वो ऐसा फील करते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वो चीजें ले लेते हैं। क्या गलत है ऐसी पहचान बनाना, पूछ रहे हैं? तो जवाब है बड़ा हाँ, बिग यस। तो क्या प्रॉब्लम होती है? तो क्या प्रॉब्लम होती है ये पूछ रहे हैं, आप टाइप कर सकते हैं। तो जवाब आ रहे हैं कि हम अपने सत्यता से कट जाते हैं, ये मन में अशांति पैदा करता है। हमने पहले देखा कि ये दुनिया जो है ये अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है, इनसिक्योर है, ये दुनिया ही असुरक्षित है। इसके पास एक लेबल लगा हुआ है एंड, जो खत्म होने वाली है। और आप इस दुनिया के आधार पर अपनी पहचान बना रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? तो आपको भी असुरक्षा महसूस होगी, इनसिक्योरिटी। ये जितनी भी आई है, ईगो है, आइडेंटिटी है, ये हर आइडेंटिटी इनसिक्योर है, असुरक्षित है। जैसे आप कार से आइडेंटिफाई करते हैं, तो कार के आधार पर असुरक्षा है। यानी अगर कोई बोले कि आपका कार अच्छा नहीं है, या फिर कार को टक्कर लगा दे, तो भी आप असुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये आई के साथ असुरक्षा है। तो होता क्या है कि आप एक पीड़ित मानसिकता में आ जाते हैं। यानी कोई भी आपको दुख दे सकता है, हर्ट कर सकता है, विक्टिम मेंटालिटी जिसको कहते हैं। तो उनको हर जगह डेंजर नजर आता है। जहां पर अभी वो बैठे हुए हैं प्रशांत भाई, यहाँ पर कुछ बर्ड्स आते हैं पानी लेने के लिए। तो एक बूंद पानी लेने के लिए वो 20 सेकेंड इधर उधर ऊपर नीचे देखते हैं, एक ड्रॉप लेने के लिए। यानी इतनी डेंजर महसूस करते हैं, उनको लगता है कोई उन्हें पकड़ ना ले, वो घबराते हैं। तो इसको कहते हैं विक्टिम मानसिकता, यानी पीड़ित मानसिकता। हर जगह उन्हें डेंजर नजर आता है। अगर 10 फ्रेंड हैं आपके पास और एक फ्रेंड अच्छा नहीं है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपका सारा समय उसके साथ जाएगा। चाहे वो सामने ना हो, पर आप उस सिचुएशन को, परिस्थिति को सोचते रहेंगे जो दुख देता है आपको। तो ये नेचर है ईगो का। ईगो जो है वो परिणाम है कंफ्यूजन का। तो वो ऑब्सेस होता है, यानी जुनून होता है कुछ ना कुछ नकारात्मक सोचने का। वो कुछ ना कुछ नकारात्मक सोचता ही रहेगा, तो उसके पास समय ही नहीं बचेगा और किसी चीज के लिए। ये सारा समय ईगो ले जाता है, व्यर्थ में चला जाता है इन चीजों के बारे में सोचते सोचते। तो अहंकार हो सकता है बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर। तो चलिए हम ये देखते हैं कि अहंकार जो रिलीजन के आधार पर होता है वो कैसा हो। अगर किसी ने कहा कि आपका धर्म बेकार है, या फिर कुछ और कहता है, अगर आपने पहचान नहीं बनाई है तब अगर ऐसा कोई कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि उनके पास पौधा है, उसके बारे में कोई कहे अच्छा है या बुरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पौधा भी है और वो भी है। लेकिन अगर आपने अहंकार यानी ईगो बनाया पौधे के आधार पर, तब बुरा लगेगा। ऐसे ही तो धर्म में भी, अगर आपने पहचान बनाई है तो आप बहुत हर्ट फील करेंगे अगर कोई भी कुछ कहेगा, और वो सोचता रहेगा उस बारे में और दूसरे को भी फिर वापस जवाब देने की कोशिश करेगा। तो जहां जहां पहचान होती है वहां वहां वो हर्ट फील करेगा। एक सवाल है, तो ईगो और पहचान ये कैसे संबंधित है, किसी का सवाल है। तो जवाब आ रहा है, जैसे हम उस सर्पिल में नीचे जाते हैं, जैसे कि अगर कोई गाड़ी है और उसमें हम लगाव लगा देते हैं और ये फील करते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, ये लगाव और बड़ा बड़ा होता जाता है। तो पहचान माना आप अपना स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाते हैं उस कार के आधार पर। अगर कार को कोई प्रेज करे तो आपको लगता है कि आपकी प्रेज हुई है, यानी आपकी प्रशंसा हुई है। तो कोई भी ये आए ऊपरी तौर से नहीं इस्तेमाल करता है, लेकिन मानसिकता जो है वो है पहचान बनाना, यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियसली हम ये पहचान बनाते जाते हैं अपने अवचेतन मन। अगर बच्चों के आधार पर बनाते हैं, कोई कहता है कि बच्चे अच्छे हैं तो आप खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई गलत बोल देता है यानी अच्छे नहीं है बोल देता है, तो आप व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं कि जैसे आपको बुरा बोल दिया हो। अगर पहचान नहीं है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझेंगे क्या हो रहा है लेकिन आप उससे परे रहेंगे, छोटी बातों से परे रहेंगे। तो सिस्टर सरा अपने रिफ्लेक्शंस दे रही हैं। तो सवाल है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं स्पष्टता से ये ईगो है या यहाँ पहचान है। तो जवाब आ रहा है कि हम अलग अलग एग्जाम्पल्स द्वारा ये देखेंगे, पर इस प्रक्रिया को समझ लें, ये पहचान की प्रक्रिया। तो हम यहाँ पर एक यात्री देखते हैं, अदृश्य यात्री, जैसे कि आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं और वहां पर आप आधे घंटे हैं और आधे घंटे बाद आप घर आ जाते हैं, लेकिन उस आधे घंटे के अंदर आप ये महसूस करने लगते हैं कि उनकी गाड़ी जो है, उनकी कार आपकी कार है। केवल आधे घंटे हैं आप उनके घर में, लेकिन आप पहचान बना रहे हैं। और फिर अगर कोई उस कार के बारे में बोलता है कि वो अच्छा नहीं है, तो आप उसको व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यानी ये गलत है और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात होती है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये अदृश्य यात्री के पास एक एग्जिट है, निकास है। आप देखते हैं कि हम इस दुनिया में गेस्ट हैं, यानी जो इनविजिबल ट्रैवलर है, यात्री है, वो अल्पकाल के लिए है और यहाँ से गुजर रहा है, और हमने अपने आप को एसोसिएट कर लिया, यानी पहचान बना ली है इन सब चीजों से। हम अपने साथ कुछ लाए नहीं थे यहाँ पर, और हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। तो हम अगर पारस बुद्धि से देखें तो ये बहुत ही जाहिर है। हम चीजों से एसोसिएट हैं, यानी मिले हुए हैं अलग अलग कारणों से, लेकिन हम उसको अपना बना के और चाहिए और लगाव लगा देते हैं। ये पत्थर बुद्धि हो जाता है। तो केवल हम लगाव ही नहीं लगाते, हम वहां पर पहचान बनाने लगते हैं। और हर अहंकार, हर ईगो जो है, वो बहुत ही पेचीदा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ये सकारात्मक विचार लेकर आता है, दुख लेकर आता है, और हर जगह वो विक्टिम मेंटालिटी, यानी पीड़ित मानसिकता रहती है। हर जगह वो डेंजर्स को देखता है। तो अगर आप अपने मन की पिक्चर निकालेंगे, फोटो निकालेंगे, तो आप क्या देखेंगे? आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प पिक्चर है ये। इस मन के अंदर बहुत सारे आईज हैं, ईगोज हैं। कोई डॉग के आधार पर, कोई कार के आधार पर, बच्चों के आधार पर, ये सब कुछ चल रहा है मन के अंदर। कुछ बड़े आईज भी हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ, मैथमेटिक्स की, गणित की प्रोफेसर हूँ। किसी के पास उससे भी बड़ा आई हो सकता है कि हम प्रोफेसर की वाइफ हैं, यानी उनकी पत्नी है। और इन सब का जो कॉस्ट है वो ये कि जो हमारी सत्य पहचान है वो छोटी होती जाती है। हम सब जो हैं इस पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, जो आप नीचे लाल रंग का सर्कल देख रही हैं। अगर आप सोल हैं, यात्री हैं, तो ये नीचे जो आई है लाल रंग का, ये हमारी प्राकृतिक स्टेट है, नेचुरल स्टेट है। यहाँ पर हम कोई आई का आधार नहीं बनाते हैं। हम यहाँ पर समझते हैं कि सब कुछ अल्पकाल का है, चाहे डॉग, चाहे गाड़ी है। ये जो है प्योर आई की सिचुएशन है, ये लाल रंग में जो है। और सत्य यही है कि आप अदृश्य यात्री हैं, पर जैसे समय बीतता जाता है, हम इस गलत पहचान को बना लेते हैं और उसका पोषण करते हैं। कोई प्रशंसा करता है, वो और बड़ा होता जाता है। ये सब पोषण होता जाता है ईगो का। और जैसे ये ईगो बड़े होते जाते हैं, जो सोल कॉन्शियसनेस है, यानी आत्म अभिमानी स्थिति है, वो बहुत छोटा, ये डॉट के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, एरो से। वो हो जाता है जो ब्लैक आईज के बीच में ये लाल डॉट और ये ब्लैक कलर के जो आईज है वो फैलते जाते हैं। तो भाई पूछ रहे हैं कि किस तरीके का प्रभाव पड़ता है जब ये आईज बड़े हो जाते हैं, और सही जवाब देने वाले को चॉकलेट देने वाले हैं। हम फिर से एक बार आपको प्रश्न बता देते हैं। प्रश्न है कि ये ईगो बड़ा होता जाता है तो सोल कॉन्शियस छोटा हो जाता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो जवाब आ रहे हैं कि वापस सत्यता में जाना मुश्किल होता है। हमारा मन हैवी हो जाता है, हम ये लाल रंग के आई में होते हैं तो हमारे पास ईगो नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है। वो जानता है अपनी अद्भुतता को और उसकी जीवन आनंद की और प्रेम की होती है। वो अपनी सुपर सेंशुअस अनुभवों में रहता है, यानी कर्मेंद्रियों के परे अतींद्रिय सुख में फुल रहता है। वो संपूर्ण अनुभवों में रहता है, पर जैसे अहंकार आता है, ईगो आता है, तो ये सोल कॉन्शियसनेस के साथ ये आनंद भी कम हो जाता है, और जो एंजेलिक ब्लिस है, जो सुख है, वो सब कम हो जाता है। जो आत्म अभिमानी स्थिति है वो रिच होती है। तो आप जो इस दुनिया में आज देख रहे हैं कि ये ईगो की हैप्पीनेस है, वो और उसको पोषण देती है, और जो अहंकार है, ईगो जो है, वो उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे है कि वो हमेशा भिक्षुक मानसिकता में रहता है, पीड़ित मानसिकता में रहता है। जितना वो बड़ा होता है उतना वो बेगर होता है, यानी वो हर ईगो जो है अपने आप को पोषण देता जाता है और बड़ा होता जाता है, और फिर भी वो बेगर रहता है, भिक्षुक रहता है। उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, फिर भी वो और मांगता ही रहता है। तो पूरा समाज उसी दिशा में जाता है। तो सवाल है कि जो बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं, अकम्प्लिशमेंट्स चाहते हैं, तो वो भी क्या ईगो है? तो जवाब है हाँ। जो इन सब चीजों के लिए इच्छाएं रखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सभी लाइन क्रॉस कर चुके हैं। परिस्थिति ऐसी है कि वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, अंग्रेजी में कहते हैं, यानी हमें पता ही नहीं कि हमें पता नहीं है। हम कहानी में हैं और हमें पता भी नहीं है कि हम कहानी में हैं, और इस कंफ्यूजन में हम जी रहे हैं। हम यहाँ आइडेंटिटीज बना रहे हैं उनके आधार पर जो चीज अल्पकाल की है, पहचान बना रहे हैं अल्पकाल की चीजों को लेकर। कोई और विचार हो तो आप टाइप कर सकते हैं। एक सवाल है कि जब तक ये रोल है इस ड्रामा में तो ये ऊंचा नीचा तो होएगा ही, तो ईगो तो आएगा, ये सवाल है। तो जवाब दे रहे हैं कि अहंकार आने के लिए, ईगो आने के लिए अंधकार की जरूरत है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, आप किसी के घर जाते हैं तो हम उसके डॉग के आधार पर या कार के आधार पर पहचान नहीं बनाते। आप वो डॉग को पसंद करते होंगे, कार को भी पसंद करते होंगे, लेकिन पहचान नहीं बनाते। वो आपसे उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप पूरी स्पष्टता में होंगे, क्लैरिटी में होंगे, सत्यता में होंगे, तो आप देखेंगे ये अदृश्य यात्री मेहमान है, उसकी गारंटीड निकास है, एग्जिट है कहानी से। और ये बहुत ही बड़ा एब्सर्ड पागलपन होगा कि आप यहाँ पर इस अल्पकाल की दुनिया में कोई ईगो बनाए, पहचान बनाए, अगर आप पारस बुद्धि इस्तेमाल करते हैं। कोई ये भी कह सकता है कि ये तो कार आपकी है, पर आपको पता है कि आपका एक निकास है, तो आपको पता है आप आधे घंटे बाद यहां से जाने वाले हैं, तो इसको मेरा बनाना सही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ईगो के लिए कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चाहिए, अंधकार होना जरूरी होता है। और एक बार आप इस इग्नोरेंस और कंफ्यूजन में आ जाएं, तो उनको बुरा लगने लगता है। छोटी छोटी चीजों पर वो युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं दूसरों से, ये सब कुछ ईगो की वजह से हो रहा है। तो तभी हम पूछ रहे हैं कि ये ईगो की सब्जेक्ट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि समाज में यही हो रहा है, ईगो का खेल चल रहा है, चाहे पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, क्यों वो कोई पॉलिसीज देते हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, ये सब कुछ ईगो है। दुनिया बिल्कुल अलग रहेगी अगर ईगो नहीं होता या ईगो अलग होता। एक सवाल और लेंगे हम। तो एक समय होता है जब हम क्लैरिटी में, स्पष्टता में होते हैं, लाइट में होते हैं, और एक समय हम कंफ्यूजन, भ्रम में होते हैं। जब हम स्पष्टता में होते हैं तो ये लाल रंग के आई से ये डिनोट करते हैं हम, आप चीजों को क्लीनली देखते हैं, आपको पता है आप कौन है, आपके पास क्या है, आप किससे प्रेम करते हैं, आपके सच्ची परिवार से प्रेम करते हैं, और स्टोरी को भी आप अच्छे से पहचान कि ये स्टोरी है। ये वो मन है जहां पर हमारे को शांति होती है, खुशी होती है, प्रेम होता है, संतुष्टता होती है, जब हम उस स्थिति में होते हैं। और इस स्थिति में हमारे पास उमंग उत्साह रहता है, जिसको हम एंथुजियाज्म कहते हैं। तो उस समय भी हम कुछ प्लानिंग करते हैं, हमारे पास कुछ मोटिवेशन होता है, लेकिन उस टाइम वो सारी चीजें जो हैं उसके पीछे होती है खुशी, शांति, प्रेम और स्पष्टता और संतुष्टता। तो आपके पास जो है क्रिएटिविटी होती है, रचनात्मकता आती है। जो कुछ आप प्लान करते हैं, जो कुछ भी आप लक्ष्य रखते हैं, उसके पीछे ये सब होता है। और जब हम कंफ्यूजन में होते हैं, भ्रम में, अज्ञानता में, तो तब दूसरी स्थिति होती है, वो हम देखते हैं अभी व्हाइट बोर्ड पर। तो ये आई आ जाता है कंफ्यूजन। यहाँ पर आपको ये भी नहीं पता आप कौन हैं, आपके पास असुरक्षा आती है, इनसिक्योरिटी। तो जो शुरुआत की स्थिति है वो कंफ्यूजन की है, इनसिक्योरिटी की है। तो यहां पर फिर ईर्ष्या आती है, आप प्रतियोगिता में रहते हैं, आपके पास गुस्सा भी आता है। ये सब कुछ असुरक्षा की वजह से आता है। तो यहां पर भी आपको मोटिवेशन मिलता है ये, लेकिन इसके पीछे जो होता है वो असुरक्षा, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या। तो ये सब कुछ भ्रम के अंदर होता है। तो जब आप इन सब से बाहर निकलते हैं, तब आपको लगता है कि अरे इतना समय हमने इन सब में क्यों बिताया। तो जो प्रेरणा होती है ईगो की, वो असुरक्षा से आती है। तो जो दिन के अंत में हमारे को बहुत प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है, और इस ईगो के आधार पर कर्म करने से यहाँ सजाएं भी होती हैं, पेनल्टीज जिसको कहते हैं। अगर शुरुआत की स्थिति कंफ्यूजन है, तो अंत की स्थिति पश्चाताप होती है। हम एक उदाहरण देते हैं कि एक कमरे में लोग गद्दे तक ये कलेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग आपको टाइटल दे रहे हैं कि आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग आपकी रेटिंग कर रहे हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं। तो आधे घंटे बाद आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि आपको यहां से निकलना है। तो लेकिन वो कुशंस आप यहां से कलेक्ट नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि आप सारा जीवन वहां काम करते हैं और कुशंस कलेक्ट करने के लिए, वो खुशी कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो आपको नहीं मिलती है। पर जब हमारे पास पारस ऑप्शन होता है, पारस का चुनाव होता है, तो हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सवाल है कि अगर जो सक्सेसफुल हैं, जो सफल हैं, क्या वो भ्रम में हैं, क्या वो कंफ्यूज्ड हैं? तो जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास हर समय उस ऊंची चेतना का चुनाव होता है। तो हम अगर स्पष्टता से देखेंगे तो हमें केवल यही करना है। जरूरी नहीं कि सफलता वाले सारे भ्रम में हो। तो आप उस ऊंची चेतना से आप करेंगे चीजें तो वो काम आएगी। जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया अगर आप उनकी जीवन कहानी पढ़ेंगे तो कहते हैं कि मेरे पास जब उमंग था, एक्साइटमेंट था इस बॉम्ब बनाने का, और बाद में मैं देखता हूं कि मैंने ये क्या किया, ये सारी ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सवाल बाद में आता है और फिर वो ये भी रियलाइज करते हैं कि अभी उन बॉम्ब से उनका कंट्रोल नहीं है, अब दूसरे लोग भी बना रहे हैं। तो वो उनकी उसी जीवन काल की कहानी है। पर जब हम पारस से देखते हैं तो हम वहां पर अच्छे से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इस दुनिया में, और ये पत्थर का पागलपन कैसा चल रहा है। तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जो सिस्टर सेरा पढ़ रही हैं। किसी ने कहा कि अगर आइंस्टाइन को अगर पता नहीं होता कि वो कौन है तो वो भी तो कंफ्यूजन होगा ना। तो जवाब दे रहे हैं कि हम यहाँ जो देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं सोसाइटी में जिनको हम एडमायर करते हैं और हम सोचते हैं कि वो परफेक्ट हैं, पर जो हम देख रहे हैं कि हमारी जो काबिलियत है वो कहीं ज्यादा है। तो हम यहाँ किसी को कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा जोर है वो ये कि हमारे पास बहुत ज्यादा ऊंची पोटेंशियल है, काबिलियत है, और ये सभी ह्यूमन रेस जो है सभी ने लाइन क्रॉस कर ली है। तो जो टैलेंट्स हैं वो सब ईगो की स्पेल के अंदर हैं, यानी उस ईगो के जादू के अंदर हैं, तो उसकी काबिलियत इतनी नहीं हो पाती है। अगर हम वहां से बाहर निकल जाएं तब हमारे को सही काबिलियत पता चलेगी चीजों की, और अभी सभी ईगो के जादू के अंदर हैं। तो जब हम ईगो के जादू में होते हैं तो हमारे जो एफर्ट्स भी होते हैं वो इतने प्रभाव नहीं डाल पाते। तो हम इस चित्र को फिर से देखते हैं कि ये एक समाज है जहां पर ये ईगो बड़ा होता जाता है। मान लीजिए अगर कोई बिजी है एक शहर में, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, ईगो जो है वो बड़ा होता जाता है, क्योंकि ईगो दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, इम्प्रेस करना चाहता है। तो ये सब कुछ चल रहा है और ये चलता ही जाता है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो अगर इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो हमारे को समय निकालना होगा जब हम इस छोटे ट्रू सोल कॉन्शियसनेस को पोषण देंगे, इसको नरिश करेंगे। हम इस सोल अवेयरनेस यानी आत्म जागृति में आएंगे और फिर ये स्ट्रांग होता जाएगा। हर मिनट हम यहां बिताते हैं तो वो ट्रू आई जो है वो स्ट्रांग होता है, और ये ईगो वाला आय है छोटा होता जाता है, और ये हमारे इंटरेस्ट में है। हम कई किताबें पढ़े, कुछ भी पढ़े ये, लेकिन हमारा गहरा परिवर्तन नहीं हो पाता। ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन तब आता है जब हम इस सोल को नरिश करें। तो हमारे को सेकेंड्स और मिनट्स बनाने होते हैं एक्यूरेट जागृति के, सटीक जागृति के।
द ईगो जो होता है वो बॉडी को देखता है, रोल को देखता है, ड्रामा देखता है और प्रशांत को भी देखता है। ये आत्मा देख रही है ईगो को। हर मिनट जब आत्मा ईगो को देखती है वो हायर कॉन्शियसनेस, उच्चतर चेतना का विकास हो रहा है, और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि ईगो इससे छोटा होता जा रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है आत्मा में। जैसे थोड़ा सा भी प्रकाश आने से बहुत अंधेरा खत्म हो जाता है। जैसे हम ईगो के घेराव में हैं, ईगो के चंगुल में हैं, उससे निकलने का बस यही तरीका है, सोल कॉन्शियसनेस को नरिश करना होगा। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, हाँ चीजों को समझना ये सही है, करना भी होगा। हाँ मैं बहुत सारे टॉक्स को देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, वो किताबें पढ़ सकती हूँ, बट इसका प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। उसी से सही परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ईगो के माहौल को कैसे चेंज करना चाहिए। हाँ, हम स्टोरी में है, जो स्टोरी चल रही है, स्टोरी तो स्टोरी ही है। मेरे पास ये ऑप्शन है कि उस स्टोरी को किस दृष्टिकोण से मैं देखूं। मेरे पास पारस है, पारस को यूज करूं या ना करूं, ये मेरे पास विकल्प है। जैसे एक एक मिनट जो मैं इकट्ठे करती हूँ दिन भर में, एक मिनट करके, ताकि चीजों को स्पष्टता से और पारस को स्ट्रॉन्ग कर, कोई भी रोक नहीं सकता, न मुझे रोक सकता है अपने पारस को यूज करने में। यही सबसे ज्यादा जरूरी है। कर हम चित्र बना सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं ताकि हमें याद रहे। अगर हमारा इरादा पक्का है तो कोई हमें नहीं रोक सकता, ताकि वो जो भी हम चित्र बनाएंगे और अपने आसपास रहेंगे, उसी संघ में रहेंगे, तो ये चीज पॉसिबल है। कैसा भी माहौल हो बाहर, मैं पूरे कंट्रोल में होऊंगा। तो जब हमारा विकल्प, सारे विकल्प हमारे हाथ में है, तो फिर सारी शक्ति भी हमारे हाथ में है। बस इरादे को कार्य लगाना है। जो भी कार्य हम करते हैं स्थूल दुनिया में, वो ईगो बेस्ड है या स्पिरिचुअल बेस्ड। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आजकल जो सिचुएशन है, जैसे कोई पुरुषार्थ कर रहा है, आध्यात्मिक पुरुषार्थ कर रहा है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, कोई बदलाव लेके आ रहा है, तो 3 हफ्तों के बाद क्या होने वाला है? 3 हफ्तों के बाद पूछ रहे हैं प्रशांत भाई, 3 हफ्तों के बाद क्या होगा? मैं बता रहा हूं आपको कि क्या हो सकता है। एक और ईगो का जन्म, और ये कहेगा कि मैं बहुत ही आध्यात्मिक हूं। मेरे पड़ोसियों को तो कुछ भी आध्यात्मिकता नहीं आती, वो बड़े बोंदू हैं, मैं तो कितना होशियार हूँ जो मैं स्पिरिचुअल एफर्ट कर रहा हूँ, इतनी आध्यात्मिकता में हूँ, मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ उनसे। इस तरह का ईगो जन्म लेगा। किसी ने कमेंट लिखा था कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा। एक और ईगो आएगा कि मैं तो कितना हम्बल हूं, जो भी हमारे में गुण है जो भी हमें अपने आप में अच्छाइयां है, तो उनसे सबसे ईगो पैदा हो सकता है, चाहे मैं बहुत विनम्र हूँ, चाहे मैं टाइम पे कहीं पहुंचता हूँ, हर अच्छाई का ईगो फायदा ले सकता है और वो हर एक हर समय अपने आप को दूसरे से कंपेयर करता रहेगा। इसीलिए आत्मानी स्थिति को जानना ये बहुत ही अलग है। तो जो अलग अलग तरह के देह अभिमान बनाए हैं, बहुत ही वैरायटी के हो सकते हैं और बहुत मजेदार है इनको जानना। सबको समझ आ गया होगा ये अभिमान क्या है और आत्माभिमान क्या है। क्या बिना प्रैक्टिस के भी आत्माभिमानी स्थिति पॉसिबल है? जब जब भी हम यहाँ पहुंचते हैं, जो लाल भाग दिखाया हुआ, तब ये नेचुरल बन जाता है। जैसे ईगो भी तो नेचुरल बन गया है आजकल की दुनिया में, इसी तरह आत्मानी स्थिति भी नेचुरल हो सकती है। तो इसके लिए होमवर्क करना होगा और ये छोटे छोटे जो आई बने हटाना पड़ेगा। इसीलिए तो हम आज यहाँ पर एकत्रित है। एक चीज जानना बहुत अच्छी है कि ईगो सिर्फ अंधेरे में पैदा होता है। हमारे पास ये विकल्प है वो प्रकाश को लाने का, ज्ञान के प्रकाश को लाना। ज्ञान के प्रकाश में ईगो कभी आ सकता, और जो सच्चाई का प्रकाश है उसमें भी ईगो नहीं हो सकता। तो ये हमारे फेवर में है। तो अगर जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं, रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं, तो ईगो कम होता जाएगा। और फिर वो हमारा नेचुरल स्टेट हो सकता है। तो और ज्ञान के प्रकाश से ही ईगो हट सकता है, और कोई तरीका है नहीं। और जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिल गया है तो हमें आदत बनानी चाहिए। जो भी आदत हम बनाते हैं वो रहती है। जैसे किसी की आदत होती है कि एक काम को एक पर्टिकुलर तरीके से करने की, तो उसी तरह से वो करता रहता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। अच्छी हैबिट्स बनानी चाहिए, एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। डिसिप्लिन में रहना होगा। तो ये जो हम कहते हैं हमें एफर्ट लगाना है, पुरुषार्थ करना है, वो भी मजे मजे से हो जाएगा। मेहनत नहीं लगेगी। हाँ, शुरू में मेहनत करना पड़ेगा, क्या दुआओं से काम चल सकता है? दुआओं से पुरुषार्थ मिलते हैं, दुआएं भी उन्हीं को मिलती है जो पुरुषार्थ करें। अगर हम कहें कि दुनिया पूरे अपने ही अपने आप के इच्छाओं की पूर्ति में लगी हुई है तो क्या ये सच होगा? हाँ, प्रशांत भाई कह रहे हैं दुनिया इसी की ओर बढ़ रही है, सिर्फ अपने आप को ही देख कर रही है, जिसे हम नार्सिसिज्म कहते हैं इंग्लिश में। ये सब तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ऐसे समय में जब सब कुछ चल रहा है, हम सचमुच में गुणवान बन सकते हैं। ये जो ईगो, जहाँ हम सब कुछ किसी को स्माइल दे रहे हैं, पूरी तौर पर फॉर्मेलिटी की तौर पर बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, और अभी हमारे पास ऑप्शन है सच्चा बनना, दिल से सच्चे बनने की ऑप्शन है इसी माहौल में, पारस का चश्मा पहन के हम अपनी सच्चाई में टिक के फिर काम कर सकते हैं, कार्य में आ सकते हैं। हर एक एक फरिश्ता है, हर एक कोई बहुत अच्छा है, क्या हम इस चीज को देख पा रहे हैं? थोड़े बहुत अच्छा नहीं है कोई, हर एक बहुत अच्छा है। और दुनिया ऐसी हो गई है कि उन्हें एक्टिंग करनी पड़ती है कि वो अच्छे हैं, और चिंता में डूबे हुए हैं कि मौत के डर से जीते हैं। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि उन्हें ये पता नहीं कि वो अमर है, उन्हें ये पता नहीं कि वो सचमुच में पहले से ही बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब हम ब्रेकआउट जाएंगे, क्या हम ईगो कहाँ पुरुषार्थ में भी क्या ईगो आ सकता है? हाँ, जरूर आ सकता है, आपके आध्यात्मिक पुरुषार्थ में ईगो आ सकता है, फिर भी हमें सिंसियर रहना पड़ेगा, हमें और बार बार सच्चे सच्चे आत्माभिमानी स्थिति में आना होगा। तो जब स्पष्टता में आते जाएंगे तो धीरे धीरे हो ईगो पुरुषार्थ का ईगो मिटता जाएगा। हम उस पुरुषार्थ वाले ईगो को देख पाएंगे जब हम सच्चे आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं। कई प्रकार के ईगो को हम देख पाएंगे जब हम सच्ची सच्ची आत्माभिमानी स्थिति में होंगे। क्या कोई क्वेश्चन आप दे सकते हैं हमें ब्रेकआउट ग्रुप के लिए, जिसको हम डिस्कशन करें? क्या हम में कोई ईगो है जिसको हम चेक कर सकते हैं, कोई छुपा ईगो जो छुपा हुआ है? क्या इसको चेक करेंगे? और उसको कैसे पार करना है? हर बार देह अभिमान से आत्माभिमानी स्थिति में कैसे आना है, इसका डिस्कशन हम करेंगे ब्रेकआउट रूम। अगर आपके ग्रुप में कोई बहुत कम लोग हैं या कोई बोलना नहीं चाहता है तो आप दूसरे रूम में जा सकते हैं। दस पंद्रह मिनट में फिर से मिलेंगे यहाँ। एक ईगो से मुक्त मन पॉसिबल है, ये जानना भी इतनी खुशी की बात है। हमारे पास एक स्पीकर है साउथ अफ्रीका से जो अपने डिस्कशन के बारे में भी बताएंगे और अपने विचार प्रकट करेंगे। शुना बहन है साउथ अफ्रीका से। इनके डिस्कशन जो रूम में था ब्रेकआउट रूम में बहुत मजा आया इनको, और उसमें से कुछ शब्द प्रकट हुए। एक था रेजिस्टेंस, जब हम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध होता है, तब मुश्किल होती है। लेकिन जब हम समर्पित हो जाते, समर्पण कर देते हैं, तब चीजें आसान हो जाती है। शायद कॉल ड्रॉप हो गया है। एक किसी ने ड्राइंग बनाई थी स्टेज की, हम उस पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए एकदम प्योर आत्माभिमानी स्थिति में जा रहे हैं। उन्होंने एक पिक्चर से इस बात को समझा, एक स्टोरी बताना चाहते हैं। किसी का एक एक्सपीरियंस था जहाँ कि कोई था जो एकदम अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। उसे समझ में आया कि ईगो के कारण है, उसमें चिंता था, डर था। उसके मन में ऐसे संकल्प बहुत चलते थे, तो उसके पूरे शरीर में मानो एक कंपन सी होती थी डर के मारे। तो जब वो पारस बुद्धि का यूज करता था और ज्ञान के प्रकाश से वो प्योर आत्माभिमानी स्थिति में आ सकता था, तो वो मानो एक स्विच के जैसे होता था, ऑन और ऑफ। एक क्षण वो डर में होता था और एक क्षण एकदम शांत हो जाता था। तो इसी तरह उसने अपने आप अपनी सच्चाई को समझा कि कैसे पत्थर और पारस को इस्तेमाल करते हुए वो स्विच कर सकता है अज्ञान और ज्ञान के बीच में। जब भी ईगो आता है अशांति होती है, ये पक्की बात है। ईगो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता, वो हमें कभी भी शांति में नहीं रहने देता और संपन्न और संपूर्ण फील कभी नहीं होने देता। ये ईगो की ही कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है जो ये समझ पा रहे हैं, जो सोल कॉन्शियसनेस और ईगो कॉन्शियसनेस के फर्क को। तो हम ज्ञान अज्ञान से सीधा ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं, तो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं अपनी स्थिति को। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने इसको जाना और समझा। और ये भी समझा कि जो आध्यात्मिक जो हमारी जर्नी है, इसमें ईगो क्रिएट करना कोई फायदेमंद नहीं है। वो एकदम ही अलग रास्ता है। और ये जानना कि मुझे कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता, हमेशा सेफ हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। कई लोग ये पहली बार सुन रहे हैं, तो इन चीजों को और अच्छे से समझने के लिए हम रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं बार बार। ये बात की टाइम पे आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको भी एक हवा बना देता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं हमेशा टाइम पे आता हूँ। और दूसरे को कहेंगे हम कि देखो तुम लेट आए हो, तुम सही हो। अगर किसी ने मुझे कहा कि तुम टाइम पे कभी नहीं आए हो, तो जो मुझे बुरा लगेगा, तब मैं पहचान सकती हूँ मेरे अंदर पंचुअलिटी का ईगो है, समय पर आने का भी ईगो बन जाता है। तो हम अपने ही मन को मैनेज कर सकते हैं। जब हम कहते हैं आदर्श यात्री, तो क्या हम पता लगा सकते कि वो जा कहाँ रहा है, उसका गंतव्य स्टेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है? जो ये ड्रामा हमारे चारों ओर हो रहा है, इसके पीछे वो अदृश्य यात्री है, और ये शिफ्ट हमें अपने आप में लाना है, क्योंकि इस समय हम फंसे हुए हैं जाल में। ड्रामा जाल बन चुका है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और हमारे पास ये ऑप्शन है, विकल्प है फ्रीडम का। समय के साथ हम और डिटेल्स भी जानेंगे। हमने पहले बताया हुआ है कि हमारा गंतव्य क्या है, लेकिन इसके बारे में हम और आगे की क्लासेस में बताएंगे। जो छोटे छोटे ईगो है हमारे अंदर, उसको कैसे पहचाना जाए? पहले हमें बड़े ईगो को देखना चाहिए। अगर हमारे रूम में कोई कचरा है, तो सबसे पहले हम बड़े कचरे को निकालेंगे ना। छोटे छोटे ईगो को हम बाद में देखेंगे, पहले मोटे मोटे ईगो को हटाएं, ताकि कचरा, जब मोटा कचरा हट जाएगा तो बहुत सारा छोटा कचरा भी हमें मिलेगा, और उसमें शायद दिन करने में ज्यादा समय लगे। जो भी हमें दिखता है पहले उसको हटाएं। तो आसान कर देगा दूसरी चीजों को देखने के लिए। किसी ने कहा कि वहां ब्लाइंड स्पॉट की तो हो सकता है। हाँ, होगा, ब्लाइंड स्पॉट होगा, इसीलिए हमने ये आज की मीटिंग बनाई है। हम बात कर रहे हैं कंफ्यूजन की। कोई कहेगा कि इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। जैसे हम पारस को स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं, ये हमारे पास बहुत शक्ति है, बुद्धि है, एकाग्रता जैसे भी बढ़ती जाएगी, स्पष्टता भी बढ़ती जाएगी। जैसे हम जितना जितना हम पारस का इस्तेमाल करेंगे, ये सब बढ़ती जाएगी, आत्माभिमानी स्थिति भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि बीज हमारे अंदर ही तो है, इसके सिर्फ पानी ही तो देना है, अटेंशन ही तो देना है। जो सन्यासी होते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो अपनी सिटी से दूर चले जाते हैं, अपने परिवार को छोड़ देते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं कि वो अपने ईगो को कैसे हटाएंगे? हाँ, इस दुनिया में बहुत तरह से लोग रहते हैं, जीवन बिताते हैं। हमारा एम क्या है कि दुनिया में रहना है, सिटी में रहना है, अपना परिवार में रहना है, जॉब भी करना है, सब कुछ करते हुए गवर्नमेंट के साथ भी रहना है, कोरोना के साथ भी रहना है। और अंदर से शिफ्ट होना है। लगता हो कि हम यहाँ से चले जाएं, लेकिन वो ईगो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमें परेशान जरूर करेगा। तो दूर भागना ऑप्शन नहीं। एक साइंस कहानी बताते हूँ, मैं बताता हूँ। एक ईगल था जिसने अंडा दिया था हेंस के बीच में, और एक बेबी ईगल पैदा हुई हेंस के साथ, और वो अच्छी हेन बनना चाहते थे, और सब कोई सब हेन जो थे वो ये कह रहे थे तुम अच्छी हेन बनो। तो ईगल ट्राई कर रहा था सबसे अच्छी हेन बनना, एक दिन वो जो बेबी ईगल है वो एक बड़े ईगल को देखता है आकाश में, और देखता है कितनी सुंदर तरीके से वो उड़ रहा है, राजा है पक्षियों का। तो ईगल ही वो है जो आकाश में उड़ता है, आकाश का राजा है। तो ये जो बच्चा ईगल है वो चिकन के साथ ही रहता है, खाता पीता सोता है, उनके तौर तरीके से रहता है। तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये स्टोरी हमने पहले भी डिस्कस की थी। किसी ने लिखा चिकन की बातों को मत सुनो, यही है मैसेज स्टोरी का। इस स्टोरी शायद पहले भी इस कोर्स में आई है, तो प्रशांत भाई शायद भूल गए थे या कुछ और बताना चाह रहे हैं। जो ईगो है हमें नीचे ही रखना चाहता है, कभी उठने नहीं देना चाहता। लेकिन हम पोटेंशियल नहीं जानते इस एंजल का, उसका जो जीवन है आकाश में होता है, जो एंजल होता है उसका। क्या ईगो और जो चिकन है और ईगल है, क्या इसका कोई कनेक्शन होता है? जो ईगल ईगल है वो अच्छी चिकन बनना चाहती है, एक टाइम चिकन बनना चाहती है, वो आकाश से है, वो आकाश से है, एक राजा है आकाश का, और अपनी ही क्षमता को वो नहीं जानती, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और जैसे हम अपनी पूरी जिंदगी निकालते रहते हैं, डरते रहते हैं मौत से, और अपने आप को जानते ही नहीं कि हम को भान किधर है, तो हम कुछ क्षण शांति में बिताएंगे एकाग्रता से शब्दों पे ध्यान देंगे और उसको आत्मसात करेंगे। पारस का इस्तेमाल करना मतलब एक नए चश्मे से इस दुनिया को देखना। पारस से आप देख पा रहे हैं कि ये जो फिजिकल दुनिया है, स्थूल दुनिया है, वो एक कहानी के तौर पे चल रही है। जो कुछ भी आज हुआ आपकी जिंदगी में वो एक स्टोरी के रूप में हुआ।
This is the world of light. World of invisible travelers.
ये दुनिया है अदृश्य यात्रियों के समूह की। और वो सब छोटे छोटे सितारों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और ये दुनिया समय से परे है। इसकी कोई सीमा नहीं है। हम ये देख पा रहे हैं कि एक बहुत सुंदर दुनिया है इस फिजिकल दुनिया से परे। सिर्फ यही दुनिया सच्ची दुनिया नहीं है, सचमुच की दुनिया तो पीछे है इसके। ये तो बस एक स्टेज है, स्टोरी है, ड्रामा है। इस सच्ची दुनिया में ही तो मैं अपना सच्चा स्वरूप देख सकती हूँ। इसको समझना कितना सुंदर अनुभव है। जैसे जैसे हम दिन में आगे बढ़ते जाएंगे, हम याद रखेंगे अपनी सच्चाई को। और हमें हमारे पास हमेशा पारस का विकल्प है, इसको भी याद रखेंगे। धन्यवाद। कि ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट के बीच में क्या फर्क है। ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी और पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है। इस फिलोसोफर ने बोला एक जोक की तरह कि जो आशावादी है सुबह उठता है और कहता है गुड मॉर्निंग गॉड, और जो निराशावादी है सुबह उठता है और कहता है गुड गॉड मॉर्निंग। उसे सुबह में भी प्रॉब्लम लगती है, शाम में भी प्रॉब्लम लगती है, हर तरफ प्रॉब्लम ही लगती है। काम में जाना प्रॉब्लम लगता है, घर में आना भी प्रॉब्लम लगता है, और जो आशावादी है वही दुनिया है, सब कुछ सेम है, लेकिन सब कुछ अच्छा लगता है, मजेदार लगता है। तो अगर हम स्टोरी में अंदर जाते हैं तो हमें लगेगा गुड गॉड मॉर्निंग, मतलब हम स्टोरी के अंदर फंसते जा रहे हैं, जाल में फंसते जा रहे हैं। तो जब हम कहते हैं गुड मॉर्निंग गॉड, तो इसका मतलब हम ऊपर आते जा रहे हैं स्टोरी के बाद। धन्यवाद। तो ये ऐसे एक्चुअली भी हुआ था कि जब एक सभा में ये स्टोरी सुनाई गई थी, तो एक आदमी ने कहा, हाँ मैं तो वही निराशावादी हूँ, हमेशा कहता हूँ गुड गॉड मॉर्निंग। तो अब हमें गुड मॉर्निंग गॉड कहना है। हमने रिकॉर्डिंग लिंक चैट में लिख दी है, और सब अपने प्रयोग करते जाएं और अनुभव सुनाते जाएं और आजादी को महसूस करते जाएं। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।